अस्सलामु अलैकुम। ये पार्ट 13 है नावल बेबाकों की तलाश। ये नावल नाबीना ख़वातीनों हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पेशकश करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी, आवाज़ हुमा निहाल। मज़ीद कुतुब के लिए 0300-291-9600 और 0321-213-8225 पे रब्ता कीजिए। तो आइए सुनते हैं पार्ट 13। रीटा खामोश हो गई। जोसेफ ने उससे ये भी ना कहा कि अगर वो चाहे तो उसे उस रस्सी से निजात दिला सकती है जिसने उसे सुतून से जकड़ रखा था। जरा ही सी देर में वो गहरी नींद सो गया। फिर उसी वक्त आंख खुली थी जब उसे रस्सी के बलों से आजाद किया जा रहा था। आंख क्या खुली थी, बस वो इसी कदर बेदार हुआ था कि चौंकाए जाने पर अपने जिस्म को पुलिस वालों के अहकामात के मुताबिक हरकत दे सके। उन्होंने किसी कागज पर उसके दस्तखत भी लिए थे। इसके बाद इन दोनों को फिर उसी बंद गाड़ी में बिठा दिया गया था जिस पर जोसेफ यहाँ तक लाया गया था। वो गाड़ी में बैठता ऊँघता रहा। रीटा भी उसके करीब ही बैठी थी। दिन के 11 बजे थे। उस बंद गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें एक सुनसान सड़क पर उतार दिया और गाड़ी जरा ही सी देर में उनकी नजरों से ओझल हो गई। जोसेफ खामोश था, आंखें खुली हुई जरूर थीं, लेकिन बेदार नहीं मालूम होता था। वो सड़क के किनारे खड़े रहे। जोसेफ बदस्तूर खला में घूरे जा रहा था। दफातन एक कार दिखाई दी और साथ ही उसकी रफ्तार भी कम होती रही और फिर वो ठीक उस जगह आ रुकी जहाँ वो दोनों खड़े थे। लिफ्ट चाहिए, ड्राइवर करने वाले ने खिड़की से सर निकाल कर कहा और जोसेफ बेसाख्ता उछल पड़ा। मुंह किसी कदर खुला था लेकिन फिर दांत सख्ती से एक दूसरे पर जम गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, रीटा बोली। मेरा साथी बीमार है। उसने पिछला दरवाज़ा खोलकर जोसेफ से अंदर बैठने को कहा और उसके बैठ जाने के बाद खुद भी दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। कहाँ जाना है, ड्राइवर ने पूछा। पहले किसी बार में ले चलो, मेरा साथी बीमार है, ब्रांडी इसके लिए मुफीद होगी। ओहो, ब्रांडी तो मेरे पास भी मौजूद है अगर किसी काम आ सके। उसने सीट के नीचे हाथ डालकर एक बोतल निकाली जो चौथाई खाली थी। मोमी कागज के 2 गिलास निकाले और पिछली सीट की तरफ बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, रीटा बोली। शायद वो खुद भी कुछ पीने की ज़रूरत शिद्दत से महसूस कर रही थी। उसने गाड़ी में उंडेल कर पहले जोसेफ की तरफ बढ़ाई जिसे वो एक ही सांस में पी गया और गिलास दोबारा रीटा की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, तुम्हें जितनी लेनी हो लेकर बोतल मेरे हवाले कर दो। रीटा ने अपने गिलास में थोड़ी सी उंडेली थी, शायद उससे ज़्यादा पी भी ना सकती क्योंकि पानी मिलाए बगैर पीने की आदत नहीं मालूम होती थी। रीटा जोसेफ की तरफ फिर बोतल बढ़ा ही रही थी कि ड्राइवर गुर्राया, मैं कारून नहीं हूँ, लाओ बोतल इधर दो। मुझे अफसोस है, रीटा ने कहा और बोतल ड्राइवर की तरफ घुमा दी जिसे झटके के साथ उसके हाथ से ले लिया गया। रीटा ने सर भारी भारी सा महसूस किया। जोसेफ की तरफ देखा, वो भी फिर ऊँघने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की आंखें बंद हो गईं। दोबारा रीटा की आंख खुली तो बदहवास हो गई क्योंकि उस अजनबी की गाड़ी में होने की बजाय खुद को एक आरामदेह मसहरी पर पाया था और जोसेफ का कहीं पता ना था। वो बौखला कर उठ खड़ी हुई। ये किसी की ख्वाबगाह ही थी। दरवाजा खुला नजर आया, वो तेजी से उठी और नंगे पैर ही दरवाजे की तरफ झपटी। दरवाजे से गुजरकर दूसरे कमरे में आई, यहाँ जोसेफ को देखा जो मसहरी पर पड़ा जिस्म तान कर जमाहियां ले रहा था। हम कहाँ हैं? वो उसकी जानिब झपटती हुई बोली। हैं? वो भी बौखला कर उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। अब हम यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, रीटा ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं समझा। हम उस गाड़ी में थे ना? हाँ, जोसेफ ने अहमकाना अंदाज में आंखें निकालकर सर हिलाया। तो फिर यहाँ कैसे पहुंचे? ओहो, वो उछल कर खड़ा हो गया। फिर वो पूरी इमारत में घूमते फिरे, लेकिन बाहर जाने के लिए कोई ऐसा दरवाजा ना मिल सका जो मुकफ्फल ना होता। पूरी इमारत में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो थक हार कर बैठ गए। दोनों ही खामोश थे। उस वक्त एक ऐसे कमरे में थे जिसे लाइब्रेरी ही कहा जा सकता था। चारों तरफ अलमारियों में किताबें लगी हुई थीं और एक बड़ी मेज थी जिसके गिर्द कई कुर्सियां पड़ी हुई थीं। दफातन रीटा ने मेज पर से सादा कागज का एक टुकड़ा उठाया और करीब ही पड़ी हुई पेंसिल से उस पर लिखने लगी। क्या तुम लिख पढ़ सकते हो? और वो कागज जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ उसे देखकर अजबात में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। रीटा फिर लिखने लगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी आवाजें सुनी जा सकें। हो सकता है कि यहाँ डॉक्टर फोन पोशीदा हो। मैंने अभी तक तुम्हें धोखे में रखा है, लेकिन यकीन करो, उसी वक्त से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी का जज्बा जाग उठा था जब तुमने कर्नल हैदर के हाथ से सारे इल्जामात अपने सर ले लिए थे। मैं तुम्हारे टाइप को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कभी किसी औरत से जिंसी तौर पर मुतासर नहीं हो सकते। तुम्हारा वो इकदाम महज उसूलों के तहत था। तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुम्हारी इंसानियत ने मुझे मुतासर किया था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो पुलिस वाले नहीं थे, बस उन्हें तुम्हारे बॉस की तलाश है। मैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। कर्नल हैदर पहली बार मेरे सामने आया है। हो सकता है वो भी इन्हीं लोगों से ताल्लुक रखता हो। स्कीम ये थी कि मुझे और तुम्हें एक जगह बंद कर दिया जाए, तुम्हें ये जहन नशीन कराने की कोशिश की जाए कि पुलिस को तुम्हारे बॉस की तलाश है। अगर उसका पता बता दो तो जवाहरात के सिलसिले में फरेब दही का मुकदमा भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कायम किया जाएगा। मैं तुम्हें इस पर आमादा करने की कोशिश करती रही। मैंने कहा कि तुम बुरी तरह पिट रहे हो, लेकिन पता नहीं बताते, तो मेरा दिल फटने लगा। मैंने तुम्हें इस पर आमादा किया कि मेरा बताया हुआ पता तुम उन्हें बता दो, ताकि वक्ती तौर पर ही सही इस अज़ियत से तो निजात मिल जाए। वो तुम्हारे बताए हुए पते पर उसे तलाश करते रहे। वापसी पर शायद तुम्हें जान ही से मार देते, लेकिन मैंने उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। किसी दूसरे तौर पर उसे मजबूर करूँगी कि अपने बॉस का सही पता बता दे। ये है पूरी दास्तान। अब ख्याल है कि उन्हें मुझ पर भी शुबा हो गया है, इसलिए वहां से निकाल कर यहाँ बंद किया है। रीटा ने पेंसिल एक तरफ रखते हुए कागज जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे गौर से पढ़ता रहा और सर हिलाता रहा, फिर खुद भी पेंसिल उठाकर लिखने लगा। उन्होंने शायद किसी कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। उस कागज की क्या नौीयत थी? इस एतराफ पर दस्तखत लिए थे कि तुमने जवाहरात के सिलसिले में कर्नल हैदर को धोखा देने की कोशिश की थी, रीटा ने लिखा। लेकिन जब वो पुलिस वाले थे ही नहीं तो, जोसेफ ने लिखा। लेकिन रीटा ने जुमला पूरा ना करने दिया। समझने की कोशिश करो, पुलिस वाले इतनी पिटाई करने के बाद के जख्म तक हो गए हों, किसी एतराफ नामे के बगैर नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा करें तो खुद उनके खिलाफ वही आदमी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे, जोसेफ ने लिखा। वो दरअसल तुम्हें बावर कराना चाहते थे कि वो पुलिस वाले ही हैं, ताकि मुझ पर तुम्हारा एतमाद बदस्तूर बरकरार रहे। जोसेफ थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, बिल्कुल समझ गया हूँ। उसने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या तुम समझती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बेहोश हो गया था? जोसेफ हंसकर बोला, अगर ऐसा ही है तब भी खामोश रहो। रीटा ने पेंसिल उठाकर कागज पर लिखा, खत्म करो। जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने एक ही गिलास तो पी थी। इस इतनी शराब में जितनी ख्वाब आवर दवा हो सकती थी, उसने मुझे अपनी मिकदार से कहीं ज्यादा सुरूर बख दिया था। बस, रीटा ने बौखला कर कहा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वरना हम दोनों ही जान से मार दिए जाएंगे। फिक्र ना करो, सभी चुन चुन कर मारे जाएंगे जिन्होंने ये चक्कर चलाया है। तुम मेरे बॉस को क्या समझती हो? अरे, खुदा ने 10,000 आदमियों की अकल उसे अता की है। तुम क्या समझती हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कौन लाया है? रीटा ने बेसाख्ता पूछा। मेरा बॉस, रीटा उछल पड़ी। हाँ, वो मेरा बॉस था। वो अपने खादिमों की तरफ से कभी और किसी हाल में भी गाफिल नहीं रहता। तब तो ठीक है, रीटा यक बयक चहकने लगी। मुझे भी उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, क्योंकि हम लोग उसकी तस्वीर देख चुके थे। शायद एक मेरे वैनिटी बैग में भी पड़ी हो। लेकिन अब क्या होगा? बॉस जाने, जोसेफ ने लापरवाही से कहा। बॉस? ओ, मैं तुम्हारे बॉस को करीब से देखना चाहती हूँ। क्यों? जोसेफ किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना नजर आने लगा। वो सब उससे बहुत खाइफ हैं, उसे तलाश करके कत्ल कर देना चाहते हैं। अंजुमन ने कभी किसी की परवाह नहीं की। तुम्हारा बॉस कौन है? जमशेद कियानी, यहाँ का सबसे बड़ा एडवोकेट। वो मुअम्मर आदमी जिसने बड़ी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया था, जमशेद कियानी ही तो था। वो क्या चाहता है? फिलहाल तो यही चाहता है कि तुम्हारे बॉस को तलाश करके कत्ल कर दिया जाए। मुझे अपने बॉस से मिलाओ। कहाँ से मिलाऊं? वो हमें छोड़कर न जाने कहाँ चला गया होगा। क्या तुम पर इस हद तक एतमाद नहीं करता कि तुम उसके पते से वाकिफ हो? मैं खुद ही नहीं चाहता कि वो मुझ पर इस हद तक एतमाद करे। क्यों? हो सकता है किसी किस्म की अजियत मुझसे उसका पता उगलवा ही ले, तो तुम उसके लिए जान दे सकते हो। मैं अपने बाप को भी उस पर कुर्बान कर सकता हूँ। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे रात की ड्यूटी पर पहुँचना है। तुम जरूर पहुँचोगी, मुतमईन रहो। हम तुम्हें कैद में नहीं रखेंगे। मेरा बॉस जरायम पेशा औरतों की भी बेइज्जती पसंद नहीं करता। वो कहता है, औरत चाहे जैसी हो, हर हाल में मुतबर्रिक रहती है, क्योंकि उसने पैगंबरों, वलियों और बड़े बड़े बुजुर्गों को जन्म दिया है। सिंह ही 3 दिन से साजिदा को राह पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई थी। इस वक्त भी वो उससे कह रहा था, चलो, मैंने तस्लीम कर लिया, कि तुम अंजुमन की वफादार हो और इमरान के पंजे से निकलने की कोशिश करती हो, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि तुम पहले भी इस बुराई में मुलव्वस रह चुकी हो उस मिल ऑनर के लड़के से। हाँ, साजदा सर हिलाकर बोली, लेकिन बाद में उसी मिल ऑनर के लड़के की पसली की दो हड्डियां भी मैंने तोड़ दी थी। अरे तुम बाद में मेरा भी बीमा कर देना, मुझे कोई एतराज ना होगा। देखो मान जाओ, मैं इस मामले में बेहद शरीफ आदमी वाकई हुआ हूँ। अगर चाहता तो तुम बच नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। औरत तो एक नर्म और नाजुक फूल है, इसलिए कसाब बनकर जाना कम अज कम मेरी जमालियाती हिस्स तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाकई बड़े खुश ज़ौक हो। साजदा मुस्कुराई। अच्छा मैं एक तदबीर बताती हूँ। अब तुम अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो कि मैं राह पर आ जाऊँ। अपने फलसफे से तो बेहद बोर हो चुके हो और उसके खिलाफ मेरे दलाइल भी सुन चुके हो। और मैं तुम्हें बताऊँ, तुम दरअसल अपने बारे में गलत फहमी में मुब्तला हो। मैं नहीं समझा, तुम दरअसल एग्जिबिशनिज्म के मरीज हो। और बस कि कई बड़े आदमी इसी मर्ज में मुब्तला रह चुके हैं। मैं इनमें जाक जाक रूसो भी था। रूसो के एतराफ पढ़े हैं तुमने? मैंने पढ़े हैं या नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। ये बताओ कि अंजुमन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फिलहाल मैं ही उस अंजुमन का सदर हूँ। मुझ पर पब्लिक गार्डन में हमला किसने किया था? इमरान या इमरान के साथी ने? क्यों, क्या उसे इल्म हो गया है कि मैं अंजुमन की वफादार हूँ? हरगिज नहीं, सिंह ने तल्ख सी हंसी के साथ कहा। सिर्फ हमें ये बावर कराना चाहता है कि तुम अंजुमन ही की वफादार हो। मैं नहीं समझी, वो मुझे चचा कहता है, कुछ समझकर ही कहता होगा। मैं बिल्कुल नहीं समझी। अच्छा तो समझो, तुम अंजुमन की वफादार हरगिज नहीं हो। तुम इसलिए यहाँ भिजवाई गई हो कि वो तुम्हारे ज़रिए से मुझ तक पहुँच सके। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं जिस औरत में दिलचस्पी लेता हूँ उसे उसकी कब्र से भी खोद निकालता हूँ। लिहाजा क्यों ना वो तुम्हें ही आलाकार बनाए। वो क्या जाने कि तुम मुझ में दिलचस्पी लेते हो। ओह, क्या वो रात भूल गई जब मैं तुम्हें उस देही हवेली के अंदर ले गया था और वो तुम्हारी तलाश में वहां जा पहुंचा था? साजदा कुछ ना बोली। अब वो भी सोच रही थी कि आखिर गोली उसके लगी क्यों नहीं। कुछ देर बाद सिंह ही बोला, किसी को यकीन आए या ना आए, मुझे यकीन है कि तुम आजकल उसके सही पते से वाकिफ ना होगी, उसका कोई साथी वाकिफ ना होगा। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे भी उसके बारे में बताओ, साजदा ने घिघिया कर कहा। वो कतई तौर पर भुला चुकी थी कि खुद किस किस्म का रोल अदा कर रही है। करीब करीब इतना ही हरामी है जितना मैं हूँ, सिंह ही ने संजीदगी से कहा। मुझे तो कम अज कम तुम जैसी औरतें ही समझ सकती हैं, लेकिन उसे किसी किस्म की भी औरत नहीं समझ सकती। और सुनो, कई मौके ऐसे भी आए जब मैं उसे हमेशा की नींद सुला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? एक अनजाना सा लगाव मुझे रोक देता है। क्या तुम उसे बहुत दिनों से जानते हो? हाँ, उस वक्त से जब वो लंदन में तालीम हासिल कर रहा था। उसका पेशा क्या है? पुलिस के लिए काम करता है, अक्सर प्राइवेट केसेस भी ले लेता है। अंजुमन से क्यों बिगड़ गई उसकी, और उसे इसका इल्म कैसे हुआ कि अंजुमन गैर कानूनी हरकत की मुर्तकिब भी होती रहती है। प्रोफेसर राशिद की हिमाकत की बिना पर अंजुमन रोशनी में आई थी, वरना सारे काम बहुसन खूबी अंजाम पाते रहते। वो मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए इमरान के पास दौड़ा गया था। तुम क्या चाहते थे प्रोफेसर राशिद से? मैं उसका खात्मा चाहता था। क्यों? क्या वो पूरी तंजीम का सदर नहीं था? यकीनन था, लेकिन जिस मुल्क के लिए अंजुमन काम कर रही है वो उससे गद्दारी पर आमादा हो गया था। वो पूरी तंजीम को इस तरह एक दूसरे मुल्क के हवाले कर देने की कोशिश कर रहा था कि अंजुमन के किसी फर्द को इस तब्दीली की हवा भी ना लगने पाती और वो उसी तरह काम करती रहती। वो जानता था कि तुम उसके पीछे हो। उसे इल्म हो गया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं क्यों उसकी ताक में हूँ। दरअसल अंजुमन के कयाम के बहुत पहले मेरे और उसके ताल्लुकात रहे हैं। हम दोनों ही हीरो के खपत में मुब्तला थे और अक्सर उनके लिए साथ ही बैरूनी ममालिक का सफर करते रहते थे। एक बार किसी बात पर झगड़ा हुआ और ये इतना बढ़ा कि मैंने उसे मार डालने की कसम खा ली। फिर अरसा तक हम एक दूसरे से बेखबर रहे। मैं उस मुल्क के लिए काम करने लगा जिसके लिए राशिद ने अंजुमन बनाई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के हालात से बेखबर रहे। वैसे सारी दुनिया में मेरे मुतालिक यही राय कायम कर ली गई थी कि मैं मर चुका हूँ। फिर मेरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस को इल्म हो गया के राशिद किसी तरह गद्दारी पर आमादा है। उसकी सरकोबी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। अगर राशिद को मालूम हो जाता कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लेना चाहता बल्कि उसी मुल्क की तरफ भेजा गया हूँ, तो मेरी फिक्र में पड़ने से पहले ही वो उन सारी चीजों और कागजात को तल्फ कर देता जो अंजुमन से ताल्लुक रखते थे। वो तो यही समझता था कि मैं सिर्फ अपनी कसम पूरी करने के दर पे हूँ। ओह, खत्म भी करो। तुमने भी मुझे किन बातों में उलझा लिया? क्या तुम्हें मुझ पर कभी रहम न आएगा? जीते जी तो नामुमकिन है, साजदा ने संजीदगी से कहा। मैं खूब जानता हूँ तुम इमरान पर रीझी हो, लेकिन यकीन करो कि वो उस हैसियत से तुम्हें कभी ना देखेगा। साजदा कुछ ना बोली, इसी गहरी सोच में डूब गई थी। सबीहा 3 रातों से बराबर माली की कोठरी के चक्कर लगाती रही थी, लेकिन फिर उस हैरत अंगेज आदमी से मुलाकात ना हो सकी। वो अपना सामान भी किसी वक्त उसकी लाइलमी में निकाल ले गया था। उसने सोचा मुमकिन है डैडी के वापस आने की बिना पर वो यहाँ से चला गया हो। उसके बाप ताहिर सिद्दीकी दौरे से वापस आ गए थे और उन्हें घर के हंगामों के मुतालिक भी सब कुछ मालूम हो गया था। अख्तर वाला मामला भी उनके इल्म में लाया गया। उन्होंने सबीहा की तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे उनके एतमाद को ठेस लगी हो। सब फ्रॉड था डैडी, वो हंसकर बोली थी। मैं मान लेता अगर वो पकड़ा ना गया होता, ताहिर सिद्दीकी ने मगमूम लहजे में कहा था। अरे अरे, वो पता नहीं कौन शामत ज़दा था। देखिए, मैं अभी साबित किए देती हूँ, वो खत मम्मी के पास है। फिर वो उसी मजमून का दूसरा खत लिखने बैठ गई थी और अपने बाप को मुतमईन कर दिया था, लेकिन वो उस आदमी के मुतालिक फिर भी तशवीश में मुब्तला रहे थे जिसने इस तरह पकड़े और पीटे जाने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। ड्राइवर और सुहेल वाले वाकयात के तذکرے की कोई जरूरत ही नहीं थी, लिहाजा सबीहा ने इस सिलसिले में खामोश ही रहना मुनासिब समझा था। ड्राइवर के बारे में बाप को भी वही कहानी सुना दी थी जो माँ को सुनाई थी। आज अचानक ताहिर साहब ने बेहद संजीदगी से उसे मुखातिब किया और वो उनके अंदाज में हिचकिचाहट सी महसूस करके चौंक पड़ी। वो उसे अलग ले जाकर गुफ्तगू करना चाहते थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बहुत जहीन और रहम दिल हो। शुक्रिया डैडी, उसने मुतहयराना लहजे में कहा। उनकी गुफ्तगू का ये अंदाज उसके लिए बिल्कुल नया था। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? फलसफे में डॉक्टरेट लूंगी। और क्या डैडी? मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मतलब ये कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। वो तो हो ही जाएगी, लेकिन शादी के बाद मुझे दूसरे का पाबंद हो जाना पड़ेगा। फिर शायद मैं अपनी तालीम जारी ना रख सकूं। तुम तालीम जारी रख सकोगी, वो इसमें कतई हारिज ना होगा। उसे सहारे की जरूरत है बीबी, तुम रहम दिल हो, हमदर्दी के जज्बात से भरपूर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? कर्नल हैदर की। वो तुम्हारी फूफी का लड़का है। ओह, तो ये मसला फिर छेड़ दिया आपने। क्या आपको इल्म नहीं कि मैं पहले ही शिद्दत से उसकी मुखालफत कर चुकी हूँ? क्या इसलिए कि उसकी एक टांग जाया हो गई है? जी हाँ, वो करीब करीब अपाहज है, लेकिन इतनी दौलत रखता है कि कई पुश्तें बैठकर खा सकती। इसीलिए तो वो मेरी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं। दौलत उसका सबसे बड़ा सहारा है। वो मुझ जैसे सैकड़ों सहारे खरीद सकता है। मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन किसी दूसरे का इंतखाब कर चुकी हूँ। किसका इंतखाब कर चुकी हो? ताहिर साहब ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में पूछा। अगले चौराहे पर पीपल के दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा रहता है जिसके दोनों हाथ मफलूज हैं। क्या बख्ती हो, मेरा दिल हमदर्दी के जज्बात से लबरेज है। मैं रहम दिल हूँ, मैं उसका सहारा बनूंगी, उसे कमा कर खिलाऊंगी, उसे दिन भर एक एक पैसे के लिए हलक ना फाड़ना पड़ेगा। मैं उसके लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया करूंगी। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया है। तीर कमान से निकल चुका है। सबीहा ने शानों को लापरवाही से जंबिश दी और कमरे से बाहर निकल गई। गुस्से से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो अपने बाप को ऐसा नहीं समझती थी कि कर्नल हैदर उसकी फूफी का लड़का था। वो उसे सिर्फ इस हद तक पसंद करती थी कि शायस्ता और मिलनसार था, लेकिन उससे शादी करने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। यकीनन उसने फिर डैडी पर दबाव डाला होगा। इससे पहले भी एक बार उसका पैगाम आ चुका था और उसने शिद्दत से उसकी मुखालफत की थी। दौलत महज दौलत, वो सोचती और ताव खाती रही। घर में जी नहीं लग रहा था, इसलिए फाइल संभाला और यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकल पड़ी। इस वक्त अपनी कार इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ताहिर साहब को ऑफिस जाना था। बस स्टैंड तक पैदल आई, टैक्सी से पहले यूनिवर्सिटी की बस मिल गई। उसने सोचा, आज बस ही सही, हो सकता है अब अवामी ही कस्म की जिंदगी बसर करनी पड़े। मुमकिन है झगड़ा इतना बढ़ जाता कि उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी पड़ती। नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकाया हिस्सा अगले पार्ट 14 में समाप्त फरमाइए।